Hare Krishna, Srimad Bhagavad Gita, Chapter 6, Text Number 9. Bhagavan Sri Krishna ke mukhaarvind se nikle hue in atyant hi pavitra shabdon ko mere saath saath ucharan kijiye. Bhagavan kehte hain, Suzaran Mitraryudasina Matyastha Dvishya Bandhushu Sadushvapi Chapapeshu Samabuddhe Vichishyati Suhrunmitrayudasena Matyastha Dvishya Bandhushu Sadushvapi Chapapeshu Samabuddhir Vishishyati Suhrun Mitraryudasena Matyastha Dvishya Bandhushu Sadushvapi Chapapeshu Samabuddhir Vishishyati Suhrun Mitraryudasena Matyastha Dvishya Bandhushu Sadushvapi Chapapeshu Samabuddhir Vishishyati Shabdoka Ath Suhrun अर्थात स्वभाव से मित्र स्नेहपूर्ण या हितेच्छु अरि मतलब शत्रु उदासीन शत्रुओं में तटस्थ मध्यस्थ शत्रुओं में पंच द्वेष ईर्ष्यालु बंधुषु संबंधियों या शुभेच्छकों में साधुषु साधुओं में अपि भी च पापीषु अर्थात पापियों में समबुद्धि समान बुद्धि वाला विशिष्यते आगे बढ़ा हुआ अनुवाद जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों प्रिय मित्रों तटस्थों मध्यस्थों ईर्ष्यालुओं शत्रुओं तथा मित्रों पुण्य आत्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। श्रील प्रभुपाद की जय हो। इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करते हैं ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके जो क्या है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः करामहयम् ददाति स्वपदान्तिकम् वंशी को सिद्ध करा, नवनीर बाधा पीतांबर धारुण बिंब फल धरोष्ठान, पुरलेन्द्र सुंदर मुखात अरविंद नेत्रात, कृष्णात परम किमपि तत्व अहम् जानि, वन्दे अहम् श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवश्च श्रीरूपं साकृजातम् सह गणरघुनाथन् विदन्तं सजीवम् सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादा सह गणललिता श्रीविशाखान्विताश्च, हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु शरत्पते गोपीश गोपीककान्ता श्रीराधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चनं वारण्ये श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि शरीरे, वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैतं गदाधरं श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भगवद्गीता मात की जय हो। अध्याय 6 ध्यान योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ध्यान योग के द्वारा परम सिद्धि प्राप्त करने का तरीका बता रहे हैं। तो इसमें क्योंकि अष्टांग योग की विधि बताई जाएगी, तो भगवान श्री कृष्ण दो स्टेजेस के विषय में बता रहे हैं। एक योग आरूढ़ है और दूसरी है योग आरूढ़स, आरूढ़ और योग आरूढ़, ये दो है ना स्टेजेस हैं, उनके विषय में भगवान बता रहे हैं। और भगवान कहते हैं कि योग आरूढ़ जो स्थिति है कर्म कारण मुच्यते, जब तक आप उस स्टेज पर हो तभी आपको कर्म करना है, और जब आप योग आरूढ़ स्थिति पर आ जाओगे तब आप कर्म को परित्याग कर दोगे। और भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि क्योंकि मन सबसे बड़ी बाधा है और इसलिए मन को पहले जीतना होगा। अगर आपको योग आरूढ़ स्थिति पर आना होगा तो क्योंकि मन सबसे बड़ा दुश्मन है, अगर उसको जीतता न गया तो भगवान कहते हैं बंधुर आत्मा मनस्तस्य येन आत्मात्मैव जितः, और आत्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्, कि अगर आपने मन को जीत दिया है तो वो सर्वश्रेष्ठ मित्र है, और अगर ऐसा नहीं किया तो मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। तो फिर मन को जीतने से क्या लाभ मिलेगा वो भगवान श्री कृष्ण बताते सेवन श्लोक नंबर 7 में। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। अत्यंत ही सुंदर भगवान ने बताया कि यदि मन को आप जीत लोगे चितात्मनः प्रशांतस्य, आप फिर शांत हो जाओ। क्योंकि जब तक विचलित रहेगा मन, तब तक हृदय शांत नहीं होगा, तब तक आप परमात्मा समाहिता नहीं होगी। परमात्मा शब्द जो है वो इस श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में फर्स्ट टाइम आया है। तो पहले मतलब ऐसे बताया गया सुप्रीम पर्सन के बारे में, लेकिन हृदय में बैठा हुआ परमात्मा वो आपको कब दिखेगा, जब आपका मन शांत होगा। तो क्योंकि जैसे इसको हम ऐसे एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जब पानी हिल रहा होता है, जैसे उसके अंदर मट्टी होती हुई है, तो इसे अगर उसके अंदर पत्थर भी फेंके जाते हैं, मट्टी भी फेंकी जाती है, लोग भी उसके अंदर होते, तो क्या होता है पानी की बॉटम में क्या वो दिखेगा नहीं हम लोगों को। लेकिन जब पानी शांत होता है, इसके अंदर कोई हलचल नहीं होती है, बिल्कुल शांत पानी होगा, तो क्या होगा उसके बॉटम में, उसके अंदर जो कुछ होगा वो दिखेगा, उसके अंदर क्या है वो दिखता है। उसी प्रकार मन भी अगर विचलित रहता है ना भौतिक वस्तुओं की इंद्रिय तृप्ति के कारण, और भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए यदि प्रयत्न करता रहता है, वो शांत नहीं होता है, तो हृदय के अंदर जो परमात्मा है वो भी नहीं दिखता है। जैसे हलचल वाले पानी में बॉटम में क्या है, उसकी तह में क्या वो नहीं दिखेगा, उसी तरह हलचल वाले हृदय में भगवान जो है वो नहीं दिखेगा। तो भगवान इसलिए कहते हैं कि अगर आपका मन जीत लिया जाए, जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता, फिर मन के अंदर जो परमात्मा बैठा हुआ है तो वो आपको समाहित दिखने लगेगा। तो यहाँ पर एक प्रश्न होता है कि ठीक है, जिसने मन को जीता उसका परमात्मा दिखने लगता, लेकिन पता कैसे चलेगा हमें, हम वो तो उसको दिखेगा ना, हमें कैसे पता चलेगा कि उसको हृदय में परमात्मा दिख रहा है। तो भगवान बताते हैं कि वो जो है वो तीन प्रकार के द्वंद्वों से शांत हो जाएगा। तीन प्रकार के द्वंद्व कौन से होते हैं, एक शरीर के, एक मन के, एक अहंकार के। अब शरीर के द्वंद्व क्या है, यहाँ पे भगवान तीन चीज बता रहे हैं, शीतोष्ण, शीत और उष्ण, यानी गर्मी और सर्दी, ये सिर्फ हमारे शरीर को फील होते हैं ना, तो ये द्वंद्व से वो मुक्त हो गया। और उसके बाद शीतोष्ण सुख दुखेषु, सुख और दुख किसके द्वंद्व है, मन के। और उसके बाद तथा मान अपमान, मान अपमान किसके द्वंद्व है, अहंकार के, मुझे कुछ बोला जा रहा है या मेरी इंसल्ट हो रही है या मुझे सम्मान मिलना चाहिए। तो शरीर, मन और अहंकार, इसके समस्त द्वंद्वों से वो आजाद हो जाता है। सुख दुख सर्दी गर्मी मान अपमान सब एक हो जाते हैं। उसके बाद भगवान बताते हैं ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थ विजितेन्द्रिय, यानी कि अब जो वो द्वंद्व से मुक्त स्थिति है ना, प्रशांत मन की, उस तक पहुंचने का तरीका बताया भगवान यहाँ पर, कि उस ज्ञान उस तृप्त आत्मा तक पहुंचने का, जब आपका हृदय संतुष्ट हो जाए, जब आपका मन संतुष्ट हो जाए, उस तक पहुंचने का क्या तरीका है, ज्ञान विज्ञान। केवल ज्ञान से आप संतुष्टि प्राप्त नहीं कर सकेंगे, बोले आपको कितना ही भौतिक ज्ञान प्राप्त हो जाए, कितना ही आध्यात्मिक ज्ञान क्यों न प्राप्त हो जाए, भले आप कितनी कथाएं सुन लो, कितने ही श्लोक आपको रटे हो जाए, चाहे पूरी भगवत गीता भी पता चल जाए, लेकिन केवल ज्ञान से आपको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, विज्ञान से तृप्ति प्राप्त होती है। विज्ञान का क्या मतलब होता है, जब हम ज्ञान के अनुसार आचरण करते हैं। जैसे एक मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि यदि किसी की ना किसी कोई बीमार हो जाता है, किसकी तबीयत खराब हो जाती है, बीमार हो जाता है, तो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसे बोलता है कि आपको तो ये प्रॉब्लम है, यानी कि जो बीमारी है वो बताता है, तो आप ऐसा करो क्योंकि आपको पेन हो रहा है पूरे जिस्म में, तो आप ये ब्रोफेन ले लो, सुबह को एक, शाम को एक और रात को एक, ये ऑगमेंटन है वो आपको हर 8 घंटे के बाद एक खानी है, और ये पेनाडोल है ये आप तब खाना जब आपको बुखार तेज हो जाएगा, फीवर तेज होगा ना तब खाना। तो जिसको पेशेंट को जो ये टेबलेट्स दी हैं उसको पूरा ध्यान हो जाए कि बुखार के लिए क्या खाना है, पेन के लिए क्या खाना है और एंटीबायोटिक कब खाना, पूरा का पूरा उसको याद हो जाए और वो पूरा दिन रटता रहे, और फिर सुबह दोपहर शाम ऑगमेंटिन हर 8 घंटे के बाद पेनाडोल से बुखार हो, और फिर सुबह दोपहर और शाम ऑगमेंटिन हर 8 घंटे के बाद पेनाडोल जब आपको बुखार हो, ऐसे बोलता रहेगा यदि, तो क्या उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी? उसी प्रकार से यदि हमें पता चल जाएगा कि हमें भगवान के नाम का स्मरण करना है, भगवान के नाम के स्मरण करने के अतिरिक्त और इस संसार में कोई दूसरा तरीका नहीं है अपने अपराधों को क्षय करने का, और कोई दूसरा तरीका नहीं है संतुष्टि प्राप्त करने का, साधु संघ और भगवान नाम संकीर्तन, ये दो कार्य ऐसे हैं जो मनुष्य जीवन को सफल करते हैं, पता चल जाना इज नॉट इनफ। हमें अपने जीवन में भगवान के पवित्र नाम को जोड़ना है, है ना? भगवान के वही जो हम श्रवण कर रहे हैं उसको अपने आचरण में उतारना है। उस तरह से एक दूसरे भी, जैसे हम इसको ऐसे भी एग्जांपल दे सकते हैं कि आपके पास कोई रेसिपी बुक हो, उसमें लिखा हो कि रसगुल्ला कैसे बनाया जाता है और चॉकलेट केक कैसे बनाया जाता है और गुलाब जामुन कैसे बनाया जाता है, सारी रेसिपीज आप पूरी पक्की पक्की याद कर लो और सबको मतलब पढ़ के भी बता दो, लेकिन उस रेसिपी के पढ़ने से स्वाद तो प्राप्त नहीं होगा ना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कुकिंग करना पड़ेगा। और उसी तरह से यदि हमें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो हमें क्या करना होगा? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, है ना? पहले श्रवण करेंगे शुद्ध भक्तों से, उसके बाद उनके साथ बैठकर भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करेंगे और उसके बाद स्मरण करेंगे भगवान का। तो ये डायरेक्ट से स्मरण करना नहीं बताया, पहले श्रवण करना शुद्ध भक्तों से, शास्त्र को एज इट इज श्रवण करना और उसके बाद भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना, और इससे आपको आनंद प्राप्त होगा और इसी से आत्मा तृप्त होगी। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थ हो विजितेन्द्रियः, वो इंद्रियों को जीत जाता है। कूटस्थ का क्या मतलब होता है? कि आध्यात्मिक रूप में स्थित, जैसे कूटस्थ उसका कैसे होता है? प्रकूटस्थ, यानी कि जो अगर बहुत बड़ी बिल्डिंग हो और उसके ऊपर कोई व्यक्ति खड़ा होता है, बहुत ऊंची हो, बहुत ज्यादा ऊंची बिल्डिंग हो और उसके टेरेस पे यदि कोई व्यक्ति खड़ा होगा, तो इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है, मतलब नीचे जो कुछ भी हो रहा है, अब 80 फ्लोर्स की कोई या 84 फ्लोर्स की कोई बिल्डिंग हो या बहुत ज्यादा बड़ी हो 60 फ्लोर्स की, तो फर्श पे क्या हो रहा है? वो अच्छा हो रहा है, खराब हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है उससे उसको कुछ कुछ लेना देना नहीं होता है। वो बोलता है क्योंकि उसको लगता है कि बहुत आगे निकल गए, अभी वो उनको इम्पोर्टेंस ही नहीं देता कि धरती तक, बल्कि उनको देख के उसको हंसी आ रही होती है, छोटी छोटी गारियां दिखती हैं, बड़े बड़े लोग भी इतने चुनने चुनने से दिखते हैं। तो क्योंकि वो व्यक्ति जो आध्यात्म में स्थित हो जाता है, जो योग आरूढ़ स्थिति पर होता है, बहुत ऊपर स्थित हो जाता है, और इतना ऊपर स्थित होने से वो इस संसार को बहुत ऊपर से देखता है, तो फिर इन भौतिक वस्तुओं में उसका कोई आकर्षण उत्पन्न होता ही नहीं है। इसे बोला कूटस्थ तो विजितेन्द्रिय, फिर वो अपनी इंद्रियों को जीत लेता है, फिर जितनी भी वस्तुएं हैं भौतिक जितनी भी वस्तुएं हैं, युक्त इत्युच्यते योगी, जब वो इस स्थिति पर पहुंच जाता है वो योगी, तो समलोष्ट्राश्म कांचना, कि उसके लिए भी समस्त वस्तुएं बराबर हो जाएंगी, समस्त वस्तुओं को समान रूप से वो देखेगा। और ये भौतिक वस्तु है, चाहे सोना हो, कंकर हो, पत्थर हो या लोहा हो, उनको एक ही, तो इसने क्या बताया कि जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं वो एक समान उसको लगते हैं। अब आज के श्लोक में भगवान बताएंगे कि ना सारे व्यक्तियों को भी वो समान दृष्टि से देखता है, यानी कि जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं उनको तो एक ना नजर से देखना फिर भी समझ में आता है, वो तो एक स्तर है ही, लेकिन उससे भी ऊंचा स्तर क्या है कि जितने भी जीव हैं उनको वो एक ही दृष्टि से देखता है। जैसे हम लोगों ने 5.18 में कैसे पढ़ा था, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाकी च पंडितः समदर्शिन। कि जो पंडित होता है वो समदर्शी होता है, इसके कारण वो ब्राह्मण हो, गाय हो, और हाथी हो, कुत्ता हो या चांडाल हो, उनको एक ही दृष्टि से देखते हैं। लेकिन उस श्लोक में और इस श्लोक में एक अंतर है, वो क्या है कि जब 5.18 में भगवान ने बताया कि ब्राह्मण गाय कुत्ते और चांडाल को एक ही दृष्टि से देखता है, तो इन सारे व्यक्तियों के साथ, जितने भी व्यक्ति हैं उनके साथ उसका कोई संबंध नहीं था। लेकिन आज भगवान जो बता रहे हैं वो बहुत ही हाईएस्ट स्टेज है, इसलिए बताया ना समा बुद्धि विशेष्यते, ऐसा समान बुद्धि वाला बहुत विशेष है, बहुत आगे बढ़ा चढ़ा हुआ है। यानी कि हाईएस्ट स्टेज क्या है योग आरुलस की, सुरन मित्रायुदासीन। सुरन मतलब स्वभाव से, जिसका स्वभाव मित्रवत होता है, यानी कि जो उसका बहुत बहुत दोस्त होता है। दोस्त मित्र का मतलब वो उसके लिए अच्छा सोचता है, उसके लिए अच्छा करता है, उसका हितैषी होता है ऐसा भी। और अरि का मतलब होता है शत्रु, है जो उसका शत्रु होता है या मित्र होता है। अब इन दोनों को एक समान समझना कितना मुश्किल है। भले कोई योगी हो जाता है, भक्त बहुत हाईएस्ट स्टेज पे आगे भी निकल जाते हैं ना, फिर भी क्या सोचते हैं कि है ना ये भौतिक वस्तुओं में भले उनका आकर्षण नहीं होता है, लेकिन कोई व्यक्ति उनसे प्रेम करता है या उनका शत्रु होता है, उनको वो इक्वल दृष्टि से नहीं देखते। वो क्या सोचते हैं कि ये अच्छा, मतलब मुझे अच्छा नहीं सोच, मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचता है, ये ऐसा है, उसके अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं, ये बुराई हैं, और भी फिर भक्ति नीचे आती। लेकिन जब इक्वल समझता है सुरन मित्रा अरि उदासीन, एक मित्र उसका जो बहुत घनिष्ठ मित्र है, जो सदैव उसके हितेश हित के बारे में सोचता है, अरि माना शत्रु जो उसका शत्रु है और सदैव उसके हानि प्राप्त कराने के लिए सोचता है, और उदासीन, उदासीन मतलब ना वो इतना ज्यादा मित्र है और ना ही ज्यादा शत्रु है, कभी क्या बन जाता है कभी क्या बन जाता है, उन सबको एक जैसा समझता है। और इसके अलावा मध्य, मध्य का मतलब होता है सेंटर। अगर वो शत्रु का शत्रु मतलब मित्र है उसको और शत्रु को तो एक बराबर समझ आ, लेकिन एक ऐसे शत्रु होते हैं जो ना मध्य में होते हैं, यानी कि सबसे सेंटर में जो होते हैं, ऐसे शत्रुओं को। और दूसरा ईर्ष्या, द्वेष का मतलब होता है ईर्ष्यालु, जो उनसे ईर्ष्या करते हैं, उनके पीछे बातें करते हैं कि वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है उनको। और बंधुषु अर्थात संबंधियों या शुभ इच्छकों को, जितने भी उसके संबंधी हैं, बंधु मतलब जो उसके रिलेटिव्स हैं उनको। और उसके बाद यहाँ तक कह दिया कि अपिच पापेषु, और पापी भी चाहे कितना भी ज्यादा पापी हो तो भी वो उन सब को सम समझता है। ये बहुत हाईएस्ट स्टेज है कि जब हम पापी हो, पुण्यकर्ता हो, मित्र हो, शत्रु हो, सेंटर के हो, उनको एक ही दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो वो होती है योग आरूढ़ स्थिति। और भगवान कहते हैं साधुष्वपि च पापेश, यानी कि साधु का मतलब होता है साधुओं में अगर साधु है वो, और पापी में सबसे बड़ा पापी भी है तो भी सम बुद्धिर विशेष्यते, सम फिर भी उसको समान बुद्धि वाला समझ, जो समान बुद्धि वाला होता है वो उनको एक जैसा समझता है। और बहुत ज्यादा वो योग में हाईएस्ट होता है विशिष्यते, यानी कि आगे बढ़ा चढ़ा होता। तो श्रीला प्रभुपाद जी बताए कि जब मनुष्य निष्कपट, निष्कपट मतलब सुहृन, और मित्रा मतलब प्रिय, और अरि मतलब शत्रु, मध्य में जो होते हैं वो, यानी कि ज्यादा आपके दुश्मन भी नहीं होते हैं, ज्यादा दोस्त भी नहीं होते हैं, और शत्रु उसके अतिरिक्त शत्रु तथा मित्रों में, पुण्य आत्माओं एवं पापियों में, साधुष्वपि च पापेषु एक भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत होता है। ऐसा जो योग में स्थित होता है इसको सारे लोग भी एक जैसे लगते हैं। मन अहंकार और शरीर के जितने द्वंद्व होते हैं उनको भी छोड़ देता है। ऐसा बहुत बहुत हाईएस्ट स्टेज का योगी होता है। मतलब पहले भगवान ने बताया योग आरूढ़ स्थिति के बारे में बताया, फिर ये बताया कि साधना के द्वारा इस पर किस तरह से पहुंचा जा सकता है, कैसे पहुंचा जा सकता है। वो अष्टांग योग में इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए कैसे कैसे मतलब हमको कार्य करना पड़ता है, तो भगवान अभी अगले श्लोकों में भगवान बताएंगे कि कैसे व्यावहारिक रूप से प्रैक्टिकली साधना करनी होती है, किस तरह से अपने मन को विचलित होने से बचाना है। यानी अब भगवान योग अष्टांग योग में इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए जंगल में जाकर किस तरह से साधना करनी है और किस तरह से इस योग आरूढ़ स्थिति को पहुंचना है, तो इसके विषय में भगवान बताना शुरू करेंगे। अब यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न है कि पहले के जितने अध्याय हमने पढ़े हैं, पांचवें अध्याय तक अब तक, तो उसमें भगवान अर्जुन को युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं कि आपको युद्ध करना चाहिए क्योंकि आपका कर्तव्य है तो आप युद्ध करो। और अभी सिक्स चैप्टर जो हमने शुरू किया है उसमें ध्यान योग पद्धति बता रहे हैं कि जंगल में जाओ ध्यान करो। तो ये टॉपिक भगवान क्यों लेकर आए, भगवान क्यों अर्जुन को कह रहे हैं कि आपको जाके जंगल में साधना करनी चाहिए, ये टॉपिक यहाँ पर आया क्यों, जब जंगल में यहाँ पर कुरुक्षेत्र में भगवान अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं क्योंकि सारे अपराधी हो गए हैं जितने भी क्षत्रिय हैं, तो उनको पनिश करने के लिए भगवान ने अर्जुन को नियुक्त किया है। लेकिन भगवान यहाँ पर ध्यान योग पद्धति क्यों बता रहे हैं कि जंगल में जाकर इस तरह से तपस्या, जैसे हम पढ़ेंगे अभी कि ना एरंगी जो स्किन है उसको उतार कर आप उसके ऊपर बैठ सकते हो, और उसके बाद योग साधना की जो अलग अलग विधियां भी हम पढ़ेंगे उसके विषय में भगवान बता क्यों रहे हैं अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान युद्ध स्थल पर। तो मेरी इच्छा है कि जो जो श्लोक को सुने वो अपनी ओर से कुछ बताए। देखिए मैंने आपको सिक्स चैप्टर तक, ये फाइव चैप्टर तक बहुत ही डिटेल से बताया है, अपनी ओर से पूरा प्रयास किया है। आप थोड़ा सा थोड़ी थोड़ी मतलब एक ही जुमले में ये बता दो कि यहाँ तक यहाँ भगवान को ध्यान योग में ध्यान योग के विषय में बताने की क्यों आवश्यकता प्राप्त हुई, क्यों आवश्यकता महसूस हुई कि अर्जुन को ये बताना चाहिए। तो आज आप सब इसका उत्तर देंगे और कल जजमेंट होगी। हरे कृष्णा, कृपया मेरे साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना जरूर कीजिएगा। हरे कृष्ण।